कौन से ज्ञान से कौन सा पदार्थ ग्रहण होता है उसकी चर्चा। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु 26वां सूत्र है पहले अध्याय का। मति और श्रुत का जो निबंध अर्थात विषय संबंधी जो ग्रहण है वो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु, कुछ पर्यायों वाले द्रव्यों में वो जानता है। निबंधनम निबंधः कस्य विषयस्य तद विषय ग्रहणम कर्तव्यम न कर्तव्यम। शंकाकार ने शंका की कि भाई वहां निबंध शब्द के बदले सीधा सीधा विषय शब्द रख लेते। मतिश्रुतियोर विषयो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु प्रकृतम विषय ग्रहणम। बोले कि विषयों का ग्रहण अभी प्रसंग में आ ही रहा है, चल ही रहा है। क्वा प्रकृतम, कहां पर? तो बोले विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषेभ्य इति अत्र। इसमें जो पिछला सूत्र था ना उसमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय ये जो शब्द दिए थे, विषय शब्द जो है वहां से यहां पर लागू हो जाएगा। अतस इसलिए तस्यार्थ वशात उसका अर्थ वशात विभक्ति परिणामो भवति इति विशेष। अर्थ वशात विभक्ति परिणामो मतलब जहां जैसा प्रयोजन होता है वहां वैसे ही विभक्ति का परिणाम हो जाता है। विभक्ति संस्कृत व्याकरण का एक शब्द, इसलिए विषयस्य इति अभिसंबध्यते। यहाँ पर इस सूत्र में विषयस्य निबंधः ऐसा संबंध जुड़ जाएगा। माने मति और श्रुत का जो विषय है उसका संबंध कहाँ बनेगा? तो बोले द्रव्येषु इति बहुवचन निर्देशः। द्रव्येषु ये बहुवचन का निर्देश है। सर्वेषां जीव धर्माधर्मा जीव धर्माधर्म कालाकाश क्या लिखा है? धर्माधर्मा लिखा है क्या? धर्म लिखा है इसमें, धर्मा लिखा है, धर्म होना चाहिए था। जीव धर्माधर्म कालाकाश पुद्गलानाम संग्रहार्थ। ये छह द्रव्यों को संग्रह कर लेना सर्व द्रव्येषु बहुवचन में। तद विशेषणार्थम लेकिन उसका विशेषण क्या दिया? असर्व पर्याय ग्रहणम। असर्व पर्याय माने सब द्रव्यों को तो जानता है लेकिन सब पर्यायों से युक्त उन छह द्रव्यों को मति और श्रुत ज्ञान अपना विषय नहीं बना सकता। आ रहा है समझ में? तानी द्रव्याणी वे जो द्रव्य हैं मति श्रुतियोर विषय भावम आपद्यमानानि वे जो द्रव्य मति और श्रुत ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कतिपयैरेव पर्यायैर विषय भाव आस्कंदन्ति न सर्व पर्यायैर अनन्तैरिति रपीति। बोले कि वो अपने कुछ पर्यायों के साथ ही मति और श्रुत ज्ञान के विषय बन पाते हैं छह द्रव्य, सभी पर्यायों के साथ विषय नहीं बन सकते। अत्राह यहाँ कहते हैं धर्मास्तिकाय आदीनि अतीन्द्रियाणि तेषु मति ज्ञानम न प्रवर्तते। धर्मास्तिकाय आदि जो द्रव्य हैं अमूर्त वो अतीन्द्रिय है माने पांच इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। तेषु मति ज्ञानम न प्रवर्तते उनमें मति ज्ञान प्रवृत्ति नहीं कर सकता। अतः इसलिए सर्वद्रव्येषु मति ज्ञानम वर्तते इति अयुक्तम। इसलिए शंका ये कर रही है यहाँ शंकाकार ने शंका ये की है कि इसलिए सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, मति ज्ञान वर्तता है, ऐसा कहना अयुक्त है, अनुचित है। आचार्य कहते हैं नैष दोष, ये दोष नहीं आएगा। क्यों? अनिंद्रियाख्यम करणम अस्ति। अनिंद्रिय नाम का एक करण यानी मन है, एक साधन है। तदालंबनो नो इंद्रियावरण क्षयोपशम लब्धि पूर्वक उपयोगो अवग्रहादि रूप प्रागे वो उपजायते। बोलते हैं कि उस मन के आलंबन से नोइंद्रिय आवरण का क्षयोपशम है मूल जिसका, उसकी लब्धि पूर्वक एक उपयोग होता है मति ज्ञान उपयोग, उसमें अवग्रह आदि रूप पहले ही वो मति ज्ञान हो जाता है उसका धर्मास्तिकाय आदि के बारे में। और फिर ततस्तत्पूर्वम श्रुत ज्ञानम फिर उस मति ज्ञान के कारण कौन सा ज्ञान होगा? श्रुत ज्ञान हो जाएगा। तद विशेष सुयोग्येषु व्याप्रियते, और वो उन विषयों में जो अपने योग्य है, श्रुत ज्ञान के योग्य जो विषय हैं उनमें व्यापृत हो जाता है, यानी प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जान सकते हैं, लेकिन मति ज्ञान जो है पुद्गल को छोड़कर बाकी जो द्रव्य इंद्रियों के ग्राह्य नहीं होते उसको मन से जानेगा, ठीक है ना, और श्रुत ज्ञान उसकी विशेष जानकारी प्राप्त कर ही लेगा, ऐसा है। अथ मतिश्रुतयोर अनंत अनंतर निर्देशार्हस्य अवधेह को विषय निबंध इति अतः। अब मति और श्रुति ज्ञान के पश्चात जो कथन करने योग्य अवधि ज्ञान है उसका विषय निबंध कौन सा है, कितना है? तो आचार्य कहते हैं रूपिष्वदेह, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में होता है। विषय निबंध इति अनुवर्तते, विषय निबंध यानी विषय रूप संबंध रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान का होता है, इसका अनुवर्तन है। रूपिषु इत्यनेन पुद्गलाः, रूपिषु इस शब्द से क्या लेंगे? पुद्गल। पुद्गल द्रव्य संबंधाश्च जीवा, और पुद्गल द्रव्य से जुड़े हुए जो संसारी जीव हैं उनको भी उसमें शामिल कर लेना पड़ेगा। अकेला पुद्गल द्रव्य नहीं, अगर जीव के साथ भी पुद्गल द्रव्य लगा हो तो ऐसे संसारी जीव में होता है ना पुद्गल, तो उस संसारी जीव को भी अवधि ज्ञान विषय बना लेता है। रूपिष्वेव अवधेर विषय निबंधो नारूपिष्विति नियम क्रियते, रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय निबंध होता है, न कि अरूपी पदार्थों में भी, ऐसा नियम किया गया है। रूपिष्वपि भवत न सर्व पर्यायेषु, लेकिन यह भी याद रखना कि रूपी पदार्थों में भी अवधि ज्ञान का प्रवेश होते हुए वह सर्व पर्यायेषु न, सब पर्यायों में नहीं जा सकता अवधि ज्ञान। स्वयोग्येष्वेव, अपने योग्य कौन सा अवधि ज्ञान, देशावधि है, परमावधि है, सर्वावधि है, तो वो जितनी सीमा तक जान सकता है उतनी ही मर्यादा में पर्यायों को जानेगा, उसके आगे अनंत पर्यायों तक के अवधि ज्ञान की सीमा नहीं बनती। इत्यवधारणार्थम असर्व पर्यायेष्वेति अभिसंबध्यते, इस प्रकार का निश्चय करने के लिए पिछले सूत्र में जो असर्व पर्यायेषु शब्द आया था उसके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। असर्व रूपिष्व सर्व पर्यायेष्व वधेह, ऐसा उसका भावार्थ निकालना। वहां क्या था? मतिश्रुति और निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, वो द्रव्येषु था, यहां पर रूपिषु। द्रव्येषु में छह द्रव्य थे, रूपिषु में पुद्गल और पुद्गल से लगा हुआ जीव या जीव से लगा हुआ पुद्गल, इनको भी ग्रहण कर रहा है, लेकिन असर्व पर्यायेषु सब पर्यायों को केवल ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा ज्ञान जान ही नहीं सकता, पहले ही बता दिया हमने। वैसे आगे बता ही रहे हैं आचार्य महाराज, हमने पहले ही सस्पेंस खत्म कर दिया। अतः तदनंतर निर्देश भाजो मन पर्यस्य को विषय निबंधयति अतः। अब इसके पश्चात जो निर्देश भाज मतलब जिसका कथन करने योग्य है, ऐसे मन पर्य ज्ञान का कौन सा विषय निबंध है इति अतः, इसलिए यहां से ये सूत्र कह रहे हैं तदनंत भागे मन पर्यस्य, उसके जो अवधि ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया हुआ रूपी पदार्थ है उसके अनंतवें भाग में मन परे ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। किसी के मन में अवधि ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अनंत हिस्से हो जाए मन की कल्पनाओं द्वारा, तो उसको भी अवधि ज्ञानी जान लेंगे, मन परे ज्ञानी जान लेंगे, ठीक है ना। यदि द्रूपित द्रव्यम, जो ये रूपी द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, सर्वावधि ज्ञान विषयत्व समर्थितम, जो सर्वावधि ज्ञान के विषय रूप से समर्थित है, तस्यानंत भागे कृतस्यैकस्मिन् भागे मनः परेह प्रवर्तते, उसके अनंत टुकड़े कर दिए जाए तो फिर मनः परे ज्ञान उसको जान लेगा। लेकिन रूपी का चिंतन कर रहे हो तब, धर्म द्रव्य का अगर कोई अपने मन में चिंतन करेंगे तो फिर मनः परे ज्ञान धर्म द्रव्य को उसके मन में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि धर्म द्रव्य अमूर्त है। धर्म द्रव्य कैसा है? अरूपी है। कोई रूपी पदार्थ का संसारी जीव का चिंतन करेंगे, सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे होंगे तो फिर नहीं जानेंगे। किसी साधु के मन में सिद्ध परमिष्ठी का ध्यान चल रहा हो तो सिद्ध परमिष्ठी का ध्यान, सिद्ध भगवान अमूर्त है, तो फिर मन परे ज्ञानी उनके मन में इतना बता देंगे कि ये कोई अमूर्त विषय का ध्यान चल रहा है इनके मन में। लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं? धर्म द्रव्य का ध्यान कर रहे हैं, सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। अब जैसे एक चर्चा आपने सुनी होगी कि आत्मा का ध्यान करने पर ही मोक्ष मिलता है, लेकिन अभी इन ग्रंथों में आप देखेंगे, सिद्धांत ग्रंथों में, तो पुद्गल परमाणु का ध्यान करते करते भी घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे तालमेल बैठा लोगे? तो उसका सीधा सरल अर्थ यह है कि जब अपन कषाय रूप परिणत होते हैं तो बंद होता है, और निष्कषाय भाव से आप किसी भी द्रव्य का ध्यान करो तो वो आत्म ध्यान इसलिए कहलाता है क्योंकि आत्म यानी अपना स्वरूप है, स्वरूप में रह करके आप ध्यान कर रहे हैं, भले पर का ध्यान कर रहे हो लेकिन अपने स्वरूप में है ना, कषाय तो नहीं कर रहे। कषाय न करने के कारण कषाय रहित होकर किसी भी चीज का ध्यान करो उसको आत्म ध्यान कह सकते हैं। इसलिए उनको वहां पर पुद्गल परमाणु का ध्यान करते करते, ओंकार का ध्यान करते करते, किसी भी चीज का ध्यान, शुक्ल ध्यान के विषय देखना आप, आगे बहुत विस्तार से बताएं, तो उनका ध्यान करते करते उनको घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। क्योंकि कहीं भी अगर मन बिना कषाय के स्थिर हो जाए अंतर मुहूर्त की, तो फिर कर्म रह नहीं सकते। इतनी शक्ति है आत्मा में कि अगर वो निष्कषाय भाव से कहीं स्थिर हो जाए तो फिर ब्लास्ट कर डाले कर्मों को। डायमंड डायनामाइट तो पत्थरों को फोड़ता, पूरे पहाड़ को भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये ध्यान में लीन हो जाए अंतर मुहूर्त के लिए तो फिर कर्म रूपी पर्वतों को भी चकनाचूर कर डाले, इतनी आत्मा में शक्ति होती है। अथान्ते यद् निर्दिष्टम् केवल ज्ञानम् तस्य को विषय निबंध दिए। आहा, अब अंत में जो निर्दिष्ट है, कहा गया है ऐसा केवल ज्ञान, उसका कौन सा विषय निबंध है? इसलिए यहां से आहा कहते हैं, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य और पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय है। यहां पर अभी एक चिंतन ऐसा चल रहा है कि सर्व शब्द का संबंध द्रव्य के साथ लगाना या पर्याय के साथ भी लगाना, ऐसे अभी आ रही है कुछ बातें। तो चूंकि पहले असर्व पर्यायेषु था, अगर यहां पर अपन असर्व पर्यायेषु लगाएंगे तो फिर तो ऐसे सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो इसकी टीका देखते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या व्याख्या की। द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्य पर्यायेति इतरेतर योग लक्षणो द्वंद्वः, द्रव्य और पर्याय इन दोनों को मिला लिया तो द्रव्य पर्याय बन गया, इसलिए इतरेतर योग लक्षणो द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास बन गया यह। योग का मतलब समास होता है, इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व नाम का यह समास बन गया। लक्षण का अर्थ यहां पर नाम है, लक्षण शब्द के दो अर्थ होते हैं, चिन्ह और नाम, ये ख्याल में रखने की बातें हैं वैसे, क्योंकि कहीं पर लक्षण शब्द का अर्थ चिन्ह है, कहीं लक्षण शब्द का अर्थ नाम है, तो कहां पर कौन सा अर्थ निकालोगे? हर जगह चिन्ह चिन्ह लगाओगे तो परेशानी हो जाएगी। तद विशेषणम सर्वग्रहणम, अब देखिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये द्वंद्व समास है, और तद विशेषणम, द्वंद्व समास में दोनों को बराबर महत्व होता है। जैसे राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मणौ ऐसा बनेगा द्वंद्व समास, राम लक्ष्मणौ गच्छतः, दोनों बराबर महत्व के साथ चल रहे हैं, वो अर्थ हो जाएगा। वैसे यहां पर द्रव्य और पर्याय दोनों को लेना, और तद विशेषणम का मतलब क्या है, द्रव्य का विशेषण या पर्याय का, दोनों का। तद विशेषणम का अर्थ सर्वग्रहणम प्रत्येकम अभी संबद्ध थे, ये तो और स्पष्ट हो गया, एक एक के साथ लगा लेना, एक एक के साथ माने वहां दो ही तो चीज है, द्रव्य और पर्याय, तो सर्व द्रव्य भी लगा लेना, सर्व पर्याय भी लगा लेना। जैसे यहां आगे कह रहे हैं, सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु इति, अब इससे आगे और क्या खुलासा होना, स्पष्ट है ना। जीव द्रव्याणि तावद् अनंतानंदानि, जीव द्रव्य कितने हैं, अनंतानंद है। पुद्गल द्रव्याणि च ततोऽपि अनंतानंदानि, पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंतानंद है, क्योंकि एक एक जीव के साथ जो कर्म लगे हुए हैं वो कितने हैं, डेढ़ समय प्रबद्ध प्रमाण। एक समय में जो कर्म आते हैं ना वो कितने होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी जितने हैं उनके अनंत वे भाग प्रमाण आते हैं, माने सिद्ध परमेष्ठियों का जो अनंतवा भाग है वो भी अनंत है, तो उतने परमाणु एक समय में अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं बंद रूप से। तो जब सिद्धों से, सिद्धों के अनंत वे भाग हैं, उतने परमाणु अपने पास एक जीव के पास है, तो फिर सब जीवों के पास कितने होंगे? तो ततोप्यनंता नहीं, जीवों से भी अनंता अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। अणुस्कंद भेद, अणुस्कंद भेद भिन्ना नहीं, लेकिन उनके भेद प्रभेद होते हैं अणु और स्कंद आदिक, तो वो भी उसमें शामिल कर लेना। धर्म अधर्म आकाशानि त्रीणि, धर्म अधर्म और आकाश ये एक 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 इस प्रकार तीन है। आ आकाशादेक द्रव्याणि, पांचवे अध्याय का एक सूत्र है, माने द्रव्यों के जो नाम गिना है ना पहले सूत्र में, अजीव काया धर्माधर्म आकाश उद्गलाह, तो धर्माधर्म आकाश तो वहां तक, आ आकाशात आकाश पर्यंत एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य है, माने धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। कालशासंख्येयस, ठीक है एक वचन, काल जो है असंख्यात है, काल द्रव्य असंख्यात है। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि पुद्गल द्रव्यों में बहुवचन दिया, जीव द्रव्यों में भी बहुवचन दिया, काल में एक वचन क्यों दिया? क्या जवाब हो सकता है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचने लायक। और संख्या दी है असंख्यात, कालाणु असंख्यात है, लेकिन काल द्रव्य एक कहा, क्या कारण हो सकता है? अलग अलग होने से क्या मतलब? जीव भी अलग अलग है, जीव कहां चिपके हैं किसी से? एक जीव दूसरे जीव से चिपका है क्या? नहीं। तो उसका समाधान यह है कि काल जो है वो एक ही प्रकार का है, जीव और पुद्गल की अनेक जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं, इसलिए उसके भेद प्रभेद अधिक होने के कारण भेद को दर्शाने के लिए बहुवचन दिया है। और काल जो है उसके भेद प्रभेद नहीं है, एक ही जात पूरे मतलब एक ही है वो, पर संख्या उसकी असंख्यात है। कालाणु एक नहीं है, असंख्यात है। तेषां पर्यायाश्च, और उनकी जो पर्याय होती है कैसी होती है उनकी पर्याय? त्रिकाल भुवः, तीनों कालों में होने वाली पर्याय, वर्तमान की एक एक पर्याय और भूतकाल की अनंत, भविष्यत काल की भी अनंत, प्रत्येकम अनंतानंतास, और वो सभी अनंतानंत हैं। वर्तमान की भी अनंतानंत है क्योंकि ये द्रव्य अनंतानंत है, भूतकाल की भी अनंतानंत है क्योंकि वर्तमान से कई कई गुने, एक समय में जब अनंतानंत है तो फिर जो अनंत समय व्यतीत हो गए उनमें कितनी होंगी, फिर भविष्य में जो आने वाले समय है उनमें कितनी होंगी, तो अनंतानंत होते हैं। तेषु, उन सब में, द्रव्यम पर्याय जातम वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भाव अतिक्रांतम अस्ति, कोई भी ऐसी पर्याय या कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो केवल ज्ञान का उल्लंघन कर सके, जो केवल ज्ञान से परे हो। क्या बड़ी जबरदस्त बात है। अपरिमित महात्म्यम हि तत् इति ज्ञापनार्थम सर्व द्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते, कि उसकी महिमा ही असीम है यही बतलाने के लिए कहा सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सुनकर के कुछ लगता है अंदर में ऐसे एकदम एक बहुमान जैसा, वो हलचली आती है ना आत्मा के प्रदेशों में जब केवल ज्ञान का वर्णन सुनते, तो कैसा लगता है अपने को? ये पता नहीं रहता कि पीछे कौन बैठा है, ऐसे मुड़ के देखो तो पता चलता है। और उनको तीनों कालवर्ती सब पर्याय सब द्रव्यों का ज्ञान एक साथ एक क्षण में है, क्या अपार महिमा है उस केवल ज्ञान की, उनको नमस्कार हूं, केवल ज्ञान को भी और केवल ज्ञानियों को भी। अब अपने को जब होगा तब देखेंगे। आह, विषय निबंधोवधृतो मत्यादीनाम, विषय निबंध का निर्णय कर लिया कि कौन से ज्ञान का कितना विषय होता है। इदंतु, लेकिन यह तो न निर्ज्ञातम, नहीं जाना कि एकस्मिन् आत्मनि स्वनिमित्त सन्निधानोपजनित वृत्तिनि, अपने निमित्त के सन्निधान से उत्पन्न है प्रवृत्ति जिनकी, ऐसे ज्ञानानि योगपद्येन कति भवन्ति इति उच्यते, एक साथ कितने हो सकते हैं एक जीव में, एक साथ इन चार पांच ज्ञानों में से कितने हो सकते हैं? सम्यक ज्ञान पांच है ना, तो इनमें से एक साथ कितने हो सकते हैं एक जीव के अंदर? तो आचार्य कहते हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक को आदि लेकर फिर भाज्यानि विभाजित कर लो आप, दो तीन चार, तो आ चतुर्भ्य, चार तक के ले जाना, चार से ज्यादा नहीं होंगे। एक शब्द है संख्यावाची, एक शब्द जो है संख्या को बतलाने वाला है। आदि शब्द अवयव वचन है, आदि शब्द जो है वो अवयव वचन है, यानी एक दो तीन ऐसे। एक आदिर येषां तानि, एक है आदि में जिनके वे, इमानी एक आदिनी, वो एक आदिनी कहलाते हैं। भाज्यानि विभक्तव्यानि, विभाजित करने योग्य, भाज्यानि का अर्थ होता है विभाजित करने योग्य। योगपद्येन एकस्मिन् आत्मनि, एक साथ एक आत्मा में। आकुतः, कहां तक के विभाजित करोगे, एक दो तीन चार ऐसे कहां तक के ले जाएंगे। आ चतुर्भ्यः, चार तक। तद्यथा, वो इस प्रकार, देखिए खुलासा कर रहे हैं। एकम तावत केवल ज्ञान, अगर एक ज्ञान हुआ किसी आत्मा के पास तो कौन सा होगा, केवल ज्ञान। न तेन सहान ज्ञानी क्षयोपशमिकानि युगपद अति अवतिष्ठन्ते, उस केवल ज्ञान के साथ अन्य जो क्षयोपशमिक ज्ञान होते हैं वे एक साथ नहीं रह सकते। क्षय ज्ञान हो गया तो क्षयोपशमिक ज्ञान का कोई काम नहीं रहा। द्वे मतिश्रुते, अगर दो हुए तो मति और श्रुत। तीनी, तीन हुए तो मतिश्रुतावधि ज्ञानानि मतिश्रुत मन प्रयज्ञानानि वा, मतिश्रुत अथवा मतिश्रुत अवधि हो सकता है तीन, और फिर दूसरा मतिश्रुत और मन परे भी हो सकता है। कोई ऐसे मुनि है जिनको अवधि ज्ञान तो नहीं हुआ लेकिन मन परे ज्ञान हो गया, तो ऐसा भी भंग बन सकता है। चत्वारी, चार ज्ञान हुए तो मतिश्रुतावधि मन परे ज्ञानानि, मतिश्रुत अवधि और मन परे ज्ञान होंगे। न पंच संति, पांच नहीं हो सकते, केवल से असहायत्वात्, क्योंकि केवल ज्ञान जो होता है वो असहाय होता है। असहाय माने किसी सहायक की उसको जरूरत नहीं होती, असहाय का मतलब लाचार नहीं है। असहाय का अर्थ यहां पर जिसको किसी सहायक की जरूरत नहीं होती, जैसे श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान की जरूरत है। इसी प्रकार सारे ज्ञान जो है कुछ परोक्ष है, कहीं ना कहीं से किसी की आवश्यकता महसूस करते हैं, केवल ज्ञान को किसी की जरूरत नहीं होती। अथ योक्तोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्ते उत अन्यथापि इति अतः, अब जो बतलाए गए मति आदि ज्ञान है वो ज्ञान नाम को ही प्राप्त होते हैं अथवा वो अन्यथा भी हो सकते हैं, अज्ञान भी हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च, मतिश्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपर्ययश्च विपरीत भी होते हैं। विपर्ययो मिथ्या इत्यर्थ, विपर्यय का मतलब मिथ्या। कुतः, क्यों, बोले सम्यक अधिकारात्, क्योंकि अभी यहां प्रकरण सम्यक दर्शन का चल रहा है, तो सम्यक दर्शन का विपरीत क्या हुआ, मिथ्या दर्शन। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द जो है समुच्चय करने के लिए, विपर्ययश्च सम्यक च इति, वो सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। कुतः पुनरेषां विपर्यय, इनमें विपरीतता कहां से आ जाती है, प्रश्न किया किसी ने। अब उत्तर दे रहे हैं आचार्य महाराज, मिथ्या दर्शनीन सहायकार्थ समवायात स रजस्क कटुकालाभुवत कटुकालाभुगत दुग्धवत। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, बोले मिथ्या दर्शन की संगति के कारण एकार्थ समवायात, उसी जीव में मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा है, उसी जीव के पास मतिश्रुतादि ज्ञान भी है, तो क्या होता है कि मिथ्यात्व की संगति के कारण वो ज्ञान भी विपरीत हो जाते हैं। दृष्टांत दिया कि जैसे धूल जिसमें सरजस्क कटुक अलाबु गत दुग्धवत, धूल भी है और जो कड़वा भी है, ऐसा जो अलाबु फल है तुम्बी, उसमें दूध भर दो तो दूध का स्वाद भी बिगड़ जाता है। दूध खराब नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान अच्छी चीज है, आत्मा का गुण है, उपयोग लक्षण हम आगे अगले अध्याय में बतलाएंगे, लेकिन मिथ्यात्वी जीव के कारण, उसके मिथ्या दर्शन के उदय के कारण वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं रहता, मिथ्या ज्ञान हो जाता। ननु च, और शंका करते हैं, तत्र आधार दोषात दुग्धस्य रस विपर्ययो भवति, उसमें तो वहां तो आधार का दोष होने के कारण दूध में रस की विपरीतता यानी कड़वापन आता है। न च तथा मत्यक ज्ञानादीनाम विषय ग्रहणी विपर्यय, बोले कि मति मत्यक ज्ञान, मति और अज्ञान की संधि करना यहां पर, मत्यक ज्ञान विग्रह करोगे तो ऐसा निकलेगा, और मति ज्ञान में त में ई की मात्रा थी, आ रहा है समझ में। अब यहां मत्य ई के साथ अ मिला दिया तो त्या बन गया, तो मति संबंधी जो अज्ञान आदि होते हैं उसमें विषय ग्रहण में तो विपरीतता नहीं पाई जाती, शंकाकार कह रहा है। वहां तो दूध खुद कड़वा हो गया था लेकिन यहां ज्ञान तो सही ग्रहण कर रहा है विषयों को, कैसे, तथा ही उसको खुलासा करके बताते हैं। सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि भी रूपादीन उपलब्धते तथा मिथ्या दृष्टि मत्यक ज्ञानेन। सम्यक दृष्टि जिस प्रकार से चक्षु आदि के द्वारा रूपादिक को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी ग्रहण कर लेता है मति अज्ञान के द्वारा। जैसे सम्यक दृष्टि को सांप सांप दिखता है, वैसे मिथ्या दृष्टि को भी सांप सांप दिखता है, तो फिर उसके ज्ञान में विपरीतता कहां रही? ये शंकाकार पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, आप जैसा चेहरा मत बनाओ घबराए हुए। ये शंकाकार की शंका आचार्य महाराज के सामने है। यथाच सम्यक दृष्टि श्रुतेन रूपादीन जानाती, और दूसरा दृष्टांत क्या दे रहा है, जिस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा रूपादिक को जानता है, निरूपयति च, और चिंतन भी करता है, तथा उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी श्रुत ज्ञानेन, मिथ्या दृष्टि भी श्रुता ज्ञानेन, श्रुत के साथ में आ की मात्रा जुड़ी है वहां, अपन बोलचाल में इसको कुमति और कुश्रुत बोलते हैं, तो इसके द्वारा वो भी जान लेता है। यथा चावधि ज्ञानेन सम्यक दृष्टि रूपिणो अर्थान अवगच्छति तथा मिथ्या दृष्टि विभंगी ज्ञानेन इति। जिस प्रकार अवधि ज्ञान से सम्यक दृष्टि रूपी पदार्थ को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी विभंग ज्ञान द्वारा रूपी पदार्थों को जान लेता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा? अत्र उच्यते, यहां कहते हैं, सदसतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सत विद्यमानम, असत अविद्यमानम इत्यर्थ। सत और असत, सत का मतलब जो मौजूद है, असत का मतलब जो नहीं है। तयोर अविशेषेण यदृच्छया उपलब्धे, इन दोनों को समान रूप से यदृच्छया मनमाने ढंग से उपलब्ध जानने के कारण विपर्ययो भवति, विपरीतता आ जाती है। जैसे जो भगवान नहीं है उसको भी भगवान जान रहा है, जो भगवान है उसको भी भगवान जान रहा है, या फिर जो भगवान है उसको भगवान नहीं जान रहा है और जो भगवान नहीं है उसको भगवान जान रहा है, विपरीतता आ गई ना। कदाचित, कभी कभी, रूपादि सदपि असत इति प्रतिपद्यते, रूप आदि होते हुए भी नहीं है ऐसा स्वीकार करता है, असदपि सद इति, और नहीं होते हुए भी है इस प्रकार स्वीकार करता है। कदाचित सत सदैव, कभी कभी जो है उसको होने रूप में ही स्वीकार करता है, असदपि असदैव इति, और कभी कभी असत को असत रूप से ही स्वीकार करता है। मिथ्या दर्शन उदयाद अद्यवस्यति, मिथ्या दर्शन के उदय के कारण इस प्रकार का अद्यवस्यति यानी प्रयत्न करता है। यथा, जिस प्रकार पित्तोदयाकुलित बुद्धिर, पित्त के उदय से आकुलित है बुद्धि जिसकी, वो कभी कभी मातरम भार्या इति, माँ को पत्नी बुलाता है, भार्याम अपि माता इति मन्यते, और पत्नी को भी कभी माँ मान लेता है। यदृच्छया यदापि मातरम माताई वैति, भार्यामपि भार्यै वैति च, तदापि न तत् सम्यक् ज्ञानम्। और यदृच्छया का मतलब क्या है कि जब मनमाने ढंग से जब इस प्रकार का निर्णय कर रहा है, तो कभी वो माँ को माँ भी मान ले, पत्नी को पत्नी भी मान ले, तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका ठिकाना नहीं है। अभी ऐसा बोल रहा है, कल पता नहीं क्या बोल दे वो। एवं मत्यादी नाम अपि रूपादिषु विपर्ययो वेदितव्य, इस प्रकार मति आदि ज्ञानों में भी मत्यादी नाम अपि रूपादिक पदार्थों, रूपी आदि पदार्थों में विपरीतता जान लेनी चाहिए। तथा है, उसका खुलासा कर रहे हैं, कश्चिन मिथ्या दर्शन परिणाम आत्मन्यवस्थितो रूपाद्युपलब्धौ सत्यामपि, कोई मिथ्या दर्शन का परिणाम आत्मा में होने पर, रूपादिक की उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यासम भेदा भेद विपर्यासम स्वरूप विपर्यासम च जनयति, वो कारण संबंधी विपरीतता, भेदाभेद संबंधी विपरीतता और स्वरूप विपर्यास को भी उत्पन्न कर डालता है। कारण विपर्यास स्थावत, कारण विपर्यास क्या है? अब ये प्रकरण थोड़ा सा समझने योग्य है, इसलिए इसको ज्यादा विस्तृत करें क्या, या फिर अगली बार कर लें इसको? ये तो अभी जितना पढ़ा है अपन ने, उसका अपन ख्याल रखो। एक तो केवल ज्ञान की जो महिमा आई थी अपने अंदर, आई हो, जिसके अंदर आई हो, बहुत अच्छी बात है, तो उसको अपने साथ ले जाना, को वो अंदर स्मरण करना कि क्या अपरिमित महिमा है केवल ज्ञान की। और फिर ये याद रखना कि अपन पीछे बैठे हुए को भी ठीक से नहीं पहचान पाते, और वो लोकालोक को और सब द्रव्यों द्रव्यों की गिनती करके बताया उसमें, उस टीका में कितना विस्तार किया था। जीव द्रव्य अनंतानंत है, पुद्गल उनसे अनंतानंत है, धर्म अधर्म और आकाश एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। इन सब के वर्तमान काल संबंधी अनंतानंत पर्याय है, भूतकाल संबंधी उससे अनंतानंत पर्याय, भविष्यत काल संबंधी अनंतानंत पर्याय, इन सब को केवल ज्ञान ग्रहण कर लेता है एक साथ एक समय में। इसीलिए कहा कि